एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल में गोता लगा रहे हैं जो सुनने में सीधा लगता है पर है बहुत गहरा। आखिर ये कानून चीज क्या है?
बिल्कुल, और इस सफर में हमारे साथी हैं रेमंड वैक्स, जिनकी किताब है फिलोसफी ऑफ लॉ, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये छोटी सी किताब बड़े सवालों से भरी हुई है।
हाँ, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कानूनों से तो घिरे ही हैं, ट्रैफिक नियमों से लेकर क्या कहते हैं संविधान तक।
सही बात है, पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये नियम आते कहाँ से हैं? क्या इनका कोई नैतिक आधार होना जरूरी है, या बस बना दिए गए इसलिए मान्य हैं?
सही कहा, ये सिर्फ वकीलों का ही मसला नहीं है। ये समझना कि कानून का असली मकसद क्या है, क्या सिर्फ समाज में व्यवस्था बनाए रखना या फिर न्याय दिलाना भी,
और उसकी भूमिका क्या है? क्या ये सबके लिए समान है या कहीं ताकतवर का हथियार तो नहीं बन जाता?
यही सब सवाल वैक्स उठाते हैं और दिखाते हैं कि जवाब उतने आसान नहीं जितने लगते हैं।
और आज के दौर में जहां हम लगातार अधिकारों, नियमों और न्याय की बात करते हैं, ये समझ और भी जरूरी हो जाती है ना?
बिल्कुल, और इस मुश्किल विषय को समझाने के लिए रेमंड वैक्स एक बेहतरीन गाइड है। वो सिर्फ एक एकेडमिक प्रोफेसर नहीं है।
हाँ, हांगकांग विश्वविद्यालय में कानून और कानूनी सिद्धांत के एमेरिटस प्रोफेसर रहे हैं।
हाँ,
पर उनमें एक खासियत है।
हाँ, वो खासियत क्या है? दशकों का अनुभव तो है ही, खासकर न्यायशास्त्र, ज्यूरिसप्रूडेंस और प्राइवेसी लॉ में। पर मुझे लगता है उनकी असली ताकत है
मुश्किल से मुश्किल कानूनी और दार्शनिक विचारों को आम भाषा में समझा पाना।
एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो भारी भरकम शब्दावली से बचते हैं, साफ सीधी भाषा,
और ऐसे उदाहरण जो हम अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। और उनका अनुभव सिर्फ एक जगह का नहीं, यूके, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, मतलब अलग अलग कानूनी व्यवस्थाओं को देखने से उनके नजरिए में एक गहराई आती है।
वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कानून क्या है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कानून को कैसा होना चाहिए।
तो ये किताब क्या करने की कोशिश करती है? एक तरह से ये कानून के दर्शन का एक तेज लेकिन सारगर्भित परिचय है।
हाँ, इसका इरादा है न्यायशास्त्र, मतलब ज्यूरिसप्रूडेंस के इर्द गिर्द जो वो रहस्य का पर्दा सा है, उसे हटाना।
और इसका केंद्रीय विचार वो ये है कि कानून सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है जिसे रट लिया और लागू कर दिया।
नहीं, वैक्स कहते हैं कि ये एक जीती जागती इंसानी चीज है।
हाँ, जो नैतिकता, न्याय, शक्ति और हमारे सामाजिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है।
और वो इस बात पर जोर देते हैं कि कानून क्या है, इस सवाल का कोई एक फिट फॉर ऑल जवाब है ही नहीं।
सही, असली बात उन बहसों को समझने में है जो सदियों से चली आ रही हैं। कानून की प्रकृति क्या है? इसका अधिकार कहाँ से आता है? इसका असली लक्ष्य क्या है?
सिर्फ नियमों का पालन करवाना या कुछ और भी?
हाँ, और ये किताब उस सोच को चुनौती देती है जो कानून को सिर्फ तर्क का एक सूखा बंद सिस्टम मानती है, जिसे लीगल फॉर्मलिज्म कहते हैं।
वैक्स पूछते हैं, क्या कानून का लक्ष्य सिर्फ नियमों का स्पष्ट होना है या उसका एक नैतिक उद्देश्य भी है, जैसे न्याय सुनिश्चित करना?
तो ये किताब उन सबके लिए है जो सोचते हैं कि हम कानून क्यों मानते हैं, या क्या एक बुरा कानून भी, क्या वो भी कानून होता है?
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं अध्यायों की दुनिया में। पहला अध्याय सीधे मुद्दे पर आता है, कानून क्या है। वैक्स तुरंत साफ करते हैं कि भाई ये परिभाषा टेढ़ी खीर है।
हाँ, वो आम सोच को तोड़ते हैं कि कानून बस राजा का हुक्म है।
और यहीं वो उस बुनियादी टकराव को सामने लाते हैं जो पूरी किताब में गूंजता है, कानून और नैतिकता का रिश्ता।
सोचिए, अगर कोई कानून बेहद अनैतिक हो, जैसे नाजी जर्मनी के वो यहूदी विरोधी कानून, तो क्या वो सिर्फ इसलिए कानून कहलाएगा क्योंकि उसे बनाने की प्रक्रिया सही थी?
क्या कानून का सही होना मतलब उसकी वैधता उसकी नैतिकता से पूरी तरह अलग है? ये एक बड़ा सवाल है।
यहीं से दो बड़े विचारों के बीच पड़ते हैं जिनके इर्द गिर्द सारी बहस घूमती है। एक है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ,
और दूसरा कानूनी प्रत्यक्षवाद, लीगल पॉजिटिविज्म। ये दो अलग अलग नजरिए हैं कानून के रोल और गोल को देखने के।
अच्छा, तो अध्याय दो हमें ले जाता है प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ की दुनिया में। ये शायद कानून के बारे में सोचने का सबसे पुराना तरीका है।
हाँ, प्राचीन यूनान के प्लेटो, अरस्तु से लेकर रोमन विचारक सिसिरो और मध्य युग के सेंट थॉमस एक्विनास तक, सबने इस पर सोचा।
इसका मूल तर्क क्या है?
ये कि एक उच्च कानून मौजूद है, चाहे वो ईश्वर से आया हो, तर्क से या प्रकृति से।
और हम इंसानों के बनाए कानून तभी असली कानून माने जा सकते हैं जब वो इस उच्च कानून के मुताबिक हों।
मतलब कानून का एक नैतिक लक्ष्य होना जरूरी है।
यहीं से वो मशहूर कहावत आती है, लेक्स इनजस्टा नॉन एस्ट लेक्स, एक अन्यायपूर्ण कानून कानून है ही नहीं। क्या जबरदस्त विचार है! इसी विचार ने इतिहास में क्रांतियों को, नागरिक अवज्ञा आंदोलनों को नैतिक बल दिया है।
बिल्कुल, सोचिए गांधी जी या मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, उन्होंने मौजूदा कानूनों को चुनौती दी
क्योंकि वो एक उच्च नैतिक कानून में विश्वास रखते थे।
और ये सिर्फ बीती बात नहीं है, 20वीं सदी के विचारक लोन फुलर ने कानून की आंतरिक नैतिकता की बात की।
हाँ, उनका कहना था कि कानून कहलाने के लिए भी कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे नियम सार्वजनिक हों, स्पष्ट हों, स्थिर हों वगैरह।
अगर कोई सिस्टम इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो वो शायद कानून कहलाने लायक ही नहीं है।
इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है नूरनबर्ग ट्रायल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी अधिकारियों पर मुकदमा चला।
किस आधार पर?
मानवता के खिलाफ अपराध के आधार पर। ये प्राकृतिक कानून का ही एक रूप था एक तरह से।
भले ही वो अधिकारी कह रहे थे कि हम तो अपने देश के कानून मान रहे थे,
दुनिया ने कहा नहीं, कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं जो किसी भी देश के कानून से ऊपर हैं। ये दिखाता है कि कई बार कानून का लक्ष्य सिर्फ व्यवस्था बनाना नहीं बल्कि गहरे नैतिक मूल्यों की रक्षा करना भी होता है।
अब इसके बिल्कुल उलट जो दूसरा दृष्टिकोण है, अध्याय 3, कानूनी प्रत्यक्षवाद, लीगल पॉजिटिविज्म।
हाँ, और ये आज की कानूनी सोच पर काफी हावी है। इसका मूल मंत्र है पृथक्करण थीसिस,
सेपरेशन थीसिस।
मतलब
कानून क्या है और कानून कैसा होना चाहिए, ये दो अलग अलग सवाल है। कानून की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे बनाया कैसे गया,
हाँ,
सही प्रक्रिया से या नहीं,
हाँ, न कि इस बात पर कि वो नैतिक रूप से अच्छा है या बुरा।
शुरुआती प्रत्यक्षवादी जैसे जॉन ऑस्टिन ने तो इसे बहुत सीधे कहा था,
हाँ, कानून मतलब संप्रभु का आदेश जिसके पीछे सजा का डर हो, सिंपल, बात खत्म।
लेकिन बाद में विचार और परिष्कृत हुए। एचएलए हार्ट का नाम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ना?
बिल्कुल, हार्ट ने कहा कि कानून सिर्फ डंडे का जोर नहीं है, ये दो तरह के नियमों का संगम है, प्राथमिक नियम
जो हमें बताते हैं क्या करें क्या ना करें, जैसे चोरी ना करें,
और माध्यमिक नियम जो शक्तियां देते हैं जैसे अनुबंध कैसे करें या नए कानून कैसे बनाएं।
और इन सबको जो चीज वैधता देती है वो है मान्यता का नियम, रूल ऑफ रिकग्निशन।
हाँ, ये कोई लिखा हुआ नियम नहीं बल्कि समाज में एक आम सहमति है कि कानून कैसे पहचाना जाएगा।
जैसे हमारे यहाँ संसद द्वारा पास किया गया बिल कानून माना जाता है, ये एक तरह का रूल ऑफ रिकग्निशन हुआ।
बिल्कुल, तो प्रत्यक्षवाद के लिए कानून का लक्ष्य क्या है? स्पष्टता, निश्चितता, व्यवस्था।
ये नैतिकता के धुंधले क्षेत्र से कानून को बाहर निकालना चाहता है ताकि हमें साफ साफ पता हो कि नियम क्या हैं।
जी,
भले ही हम उनसे नैतिक रूप से सहमत ना हो।
हैंस केल्सन ने तो इसे शुद्ध कानून का सिद्धांत कहा, जो ग्रंडन नॉर्म या एक बुनियादी मान्यता पर टिका है।
ये एक तरह से कानून को एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन की तरह देखता है।
लेकिन क्या कानून सच में इतना मशीनी है? अध्याय 4, रोनाल्ड डॉकिन के विचारों से इस पर सवाल उठाता है।
हाँ, डॉकिन प्रत्यक्षवाद के बड़े आलोचक थे और उन्होंने एक तीसरा रास्ता सुझाया, कानून व्याख्या के रूप में,
लॉ एज इंटरप्रिटेशन।
डॉकिन कहते हैं कि कानून सिर्फ नियमों का जाल नहीं है, इसमें सिद्धांत प्रिंसिपल्स और नीतियां पॉलिसीज भी गहरे तक गुंथे हुए हैं,
खासकर मुश्किल मामलों में जहां नियम साफ नहीं है या है ही नहीं।
वहां जज सिर्फ अपनी मर्जी से फैसला नहीं सुनाते।
तो फिर जज का रोल क्या है? डॉकिन के मुताबिक जज एक तरह के व्याख्याकार हैं।
हाँ, उनका काम है समुदाय के पूरे कानूनी और नैतिक ताने बाने को, जिसमें संविधान, कानून, पुराने फैसले, सामाजिक मूल्य सब शामिल हैं, समझना,
और उस मामले में ऐसा फैसला देना जो इस पूरी कहानी में सबसे अच्छी तरह फिट बैठता हो और उसे नैतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ दिखाए।
इसी को उन्होंने कहा कानून अखंडता के रूप में। यहाँ कानून का लक्ष्य सिर्फ नियम लागू करना नहीं बल्कि समुदाय के नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखना और आगे बढ़ाना है।
वो रिग्स बनाम पामर वाला केस याद है?
हाँ हाँ, पोते ने दादा को मार डाला ताकि वसीयत मिल जाए।
कोई सीधा नियम उसे रोकने वाला नहीं था पर कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि एक गहरा सिद्धांत है कि कोई अपने गलत काम से फायदा नहीं उठा सकता।
बिल्कुल, डॉकिन के लिए ये दिखाता है कि जज सिर्फ नियमों के मैकेनिक नहीं बल्कि नैतिक तर्क करने वाले व्याख्याकार हैं। ये जज की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है।
अच्छा, अब अध्याय 5 हमें कानून की प्रकृति से हटाकर उसके उद्देश्य पर ले जाता है, अधिकार और न्याय, राइट्स एंड जस्टिस।
हाँ, कानून का रोल क्या सिर्फ व्यवस्था बनाना है या लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना भी है?
यहाँ जॉन रॉल्स का जिक्र आता है और उनकी वो मशहूर किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस
और उनका वो प्रसिद्ध अज्ञानता का पर्दा वाला विचार प्रयोग।
हाँ, सोचिए अगर हमें नहीं पता कि हम समाज में कौन होंगे, अमीर या गरीब, किस जाति या लिंग के, प्रतिभाशाली या साधारण, तो हम कैसे नियम बनाना चाहेंगे?
रोल्स कहते हैं कि हम दो सिद्धांत चुनेंगे। पहला, सबको बुनियादी आजादियां बराबर मिलें।
और दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं ऐसी हों कि उनसे समाज के सबसे कमजोर तबके का सबसे ज्यादा भला हो। अंतर सिद्धांत।
तो यहाँ न्याय को कानून का केंद्रीय लक्ष्य बनाया गया है। कानून का रोल सिर्फ यथास्थिति बनाए रखना नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की तरफ बढ़ना है।
लेकिन इसकी तुलना में रॉबर्ट नॉजिक का उदारवादी नजरिया है।
हाँ, जो कहता है कि जब तक संपत्ति सही तरीके से कमाई गई है और लेनदेन मर्जी से हुआ है, तब तक कोई भी बंटवारा न्यायपूर्ण है। सरकार को टैक्स लगाकर अमीरों से लेकर गरीबों को देने का हक नहीं है।
तो ये दिखाता है कि न्याय का मतलब भी सबके लिए एक नहीं है।
बिल्कुल, और ये बहसें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। टैक्स कितना हो, आरक्षण होना चाहिए नहीं, कल्याणकारी योजनाएं कैसी हों, इन सबके पीछे न्याय और अधिकारों से जुड़े यही गहरे दार्शनिक सवाल होते हैं।
कानून का लक्ष्य क्या है? बराबरी लाना या सिर्फ स्वतंत्रता सुनिश्चित करना? ये एक कॉन्टिन्यूस सवाल है।
अध्याय 6 हमें और भी जमीनी हकीकत की ओर ले जाता है, कानून और समाज, लॉ एंड सोसाइटी, जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं।
ये नजरिया इस दावे पर ही शक करता है कि कानून निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ होता है। ये कानून को बाहर से देखता है, एक सामाजिक शक्ति के रूप में।
इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण है जो कहता है कि कानून अक्सर शासक वर्ग के हितों की सेवा करता है, भले ही वो निष्पक्ष दिखें।
फिर क्रिटिकल लीगल स्टडीज है जो तर्क देता है कि कानून अंदर से विरोधाभासी है और ताकतवर लोग इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
और नारीवादी न्यायशास्त्र फेमिनिस्ट ज्यूरिसप्रूडेंस दिखाता है कि कैसे पारंपरिक कानून अक्सर पुरुषों के नजरिए से बने हैं और महिलाओं के अनुभवों और जरूरतों को नजरअंदाज करते आए हैं।
ये सब मिलके सवाल उठाते हैं, क्या कानून का शासन सच में सबके लिए एक जैसा है,
या कानून की भूमिका अक्सर समाज में मौजूद शक्ति असंतुलन को बनाए रखना या बढ़ाना होती है? क्या कानून का घोषित लक्ष्य जैसे न्याय और उसका असली रोल जैसे सामाजिक नियंत्रण अलग अलग हैं?
ये सोचने वाली बात है। और अंत में अध्याय 7 भविष्य की ओर देखता है, 21वीं सदी में कानून कैसे बदल रहा है।
वैश्वीकरण ने देशों की सीमाओं को धुंधला किया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, मानवाधिकार कानून।
टेक्नोलॉजी तो रोज नई चुनौतियां खड़ी कर रही है, इंटरनेट, AI, बायोटेक।
हाँ, इनसे निजता, बौद्धिक संपदा, यहाँ तक कि जीवन की परिभाषा से जुड़े नए कानूनी और नैतिक सवाल उठ रहे हैं।
तो ये अध्याय याद दिलाता है कि प्राकृतिक कानून, प्रत्यक्षवाद, डॉकिन, रॉल्स, ये सारी बहसें सिर्फ इतिहास नहीं है।
बिल्कुल, आज जब हम इन नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं तो कानून के सही रोल और गोल को समझने के लिए ये दार्शनिक बुनियाद पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? कुछ ऐसे सूत्र जो बार बार सामने आए। पहला तो वही सनातन सवाल, कानून और नैतिकता का रिश्ता। क्या कानून को नैतिक होना जरूरी है?
प्राकृतिक कानून कहता है हाँ, प्रत्यक्षवाद कहता है जरूरी नहीं। और ये सिर्फ किताबी बहस नहीं है, जब हम किसी नियम को गलत या अन्यायपूर्ण कहते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक कानून की भाषा बोल रहे होते हैं।
वो कहावत, एक अन्यायपूर्ण कानून कानून है ही नहीं, लेक्स इंजस्टा नॉन एस्ट लेक्स, ये सोच आज भी आंदोलनों को प्रेरित करती है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा सवाल है, कानून को कानून कौन बनाता है? उसकी वैधता का स्रोत क्या है? क्या कोई ऊपर वाला नैतिक सिद्धांत या बनाने की सही प्रक्रिया?
प्रत्यक्षवाद कहता है प्रक्रिया देखो, कानून का अस्तित्व एक बात है, उसकी अच्छाई या बुराई दूसरे।
ये कानून को स्पष्ट और निश्चित बनाने में मदद करता है, लेकिन क्या ये हमेशा संतोषजनक होता है? हम नियमों का पालन क्यों करें, सिर्फ इसलिए कि वो नियम है?
तीसरा, जज की भूमिका क्या है? क्या वो सिर्फ नियमों को लागू करने वाला मैकेनिक है या एक नैतिक व्याख्याकार?
डॉकिन कहते हैं व्याख्याकार। न्याय करना नियमों को लागू करने का यांत्रिक कार्य नहीं बल्कि समुदाय के साझा कानूनी इतिहास की सर्वोत्तम नैतिक और राजनीतिक व्याख्या खोजने का प्रयास है।
ये जजों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और शक्ति देता है। सोचिए भारत के संदर्भ में, जब अदालतें बड़े सामाजिक मुद्दों पर फैसले देती हैं तो ये बहस कितनी प्रासंगिक हो जाती है।
चौथा थीम, जिसे आलोचनात्मक नजरिया सामने लाता है, क्या कानून हमेशा तटस्थ होता है या वो शक्ति का औजार भी है?
कानून न्याय का तटस्थ ढांचा नहीं, बल्कि राजनीति का एक रूप है जो प्रभावशाली सामाजिक समूहों की शक्ति को दर्शाता और मजबूत करता है।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून किसके लिए काम करता है। क्या उसका घोषित लक्ष्य जैसे न्याय और उसका असल सामाजिक रोल हमेशा एक होते हैं?
भारत में जमीन अधिग्रहण कानून या लैंगिक न्याय से जुड़े कानूनों को इस नजरिए से देखना दिलचस्प हो सकता है।
और पांचवा, व्यक्तिगत अधिकार बनाम समाज का भला, ये संतुलन कैसे साधा जाए?
रॉल्स का सबका भला और नॉज़िक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कानून लगातार इन दोनों के बीच रास्ता खोजने की कोशिश करता है।
कोविड के समय लगे लॉकडाउन याद है? व्यक्तिगत आजादी बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये वही पुरानी बहस थी एक नए रूप में। कानून का अंतिम लक्ष्य क्या है, व्यक्ति की रक्षा या समाज की?
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ दार्शनिक बातें हैं?
मुझे लगता है नहीं। पहला, ये हमें बेहतर नागरिक बनाता है। जब हम टीवी पर किसी नए कानून या अदालती फैसले पर बहस सुनते हैं तो हम सिर्फ सतही बातों में नहीं उलझेंगे।
हम समझ सकते हैं कि तर्कों के पीछे कौन सी गहरी सोच काम कर रही है। क्या कोई नैतिकता की दुहाई दे रहा है, प्राकृतिक कानून, या नियम की स्पष्टता की, प्रत्यक्षवाद, या अधिकारों की,
रॉल्स।
सही बात है। दूसरा, हम अदालती फैसलों को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। सिर्फ ये कहने के बजाय कि फैसला अच्छा या बुरा है, हम देख सकते हैं कि जज ने किस तरह के तर्क का इस्तेमाल किया।
क्या उन्होंने सिर्फ मौजूदा नियमों को लागू किया या किसी बड़े सिद्धांत की व्याख्या की?
बिल्कुल। तीसरा, जो लोग सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं उनके लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुत काम के हो सकते हैं। वो दिखाते हैं कि कानून में कहां कहां पूर्वाग्रह छिपे हो सकते हैं और बदलाव की जरूरत क्यों है।
और चौथा, ये हमें अपनी अंतरात्मा के बारे में सोचने में मदद करता है। किसी कानून का पालन कब करना है और कब उसका विरोध करना नैतिक रूप से सही हो सकता है।
क्या सिर्फ इसलिए कि कोई नियम है उसे मानना ही है? ये सवाल हमें कानून और हमारी अपनी नैतिकता के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करते हैं।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे दिलचस्प बात क्या रही?
मेरे लिए शायद ये एहसास कि कानून कोई स्थिर निर्जीव चीज नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है, बहसें चलती रहती हैं, और ये बहसें सिर्फ कानून के बारे में नहीं बल्कि न्याय, नैतिकता, समाज, यानी हमारे जीवन के सबसे बुनियादी सवालों के बारे में है।
हाँ, वैक्स की किताब ये दिखाती है कि कानून का दर्शन सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों का शोगल नहीं बल्कि हम सब के लिए जरूरी है।
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब सवाल पूछना सिखाती है। ये तैयार जवाब नहीं देती बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून का असली रोल क्या होना चाहिए और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए।
क्या कानून सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने का साधन है या न्याय हासिल करने का भी?
हाँ, और वैक्स जटिल विचारों को इतना सरल बना देते हैं कि आप सोचने लगते हैं, हाँ, ये तो मेरे जीवन से भी जुड़ा है।
सही है। ये किताब आपको कानून को सिर्फ नियमों के संग्रह के तौर पर नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाले नैतिक संवाद के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।